اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ٹائمز کے ہفتہ وار پروگرام تجزیہ انجم رضا کے ساتھ میں خوش آمدید ہمارے حاضرین ناظرین سامعین کو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، پاکستان نے حالیہ مہینوں میں دہشت گردانہ سرگرمیوں میں ایک تیزی درائی ہے جو یقیناً قومی سلامتی، معاشی استحکام اور علاقائی امن کے لیے ایک بہت بڑا خطرے کی الارمنگ صورتحال بنتی جا رہی ہے۔ خصوصاً پاکستان کے دو صوبوں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں عسکریت پسندی کے دوبارہ در آنے نے سیکورٹی اداروں، پالیسی سازوں اور عامۃ الناس میں بھی ایک تشویش پیدا کر دی ہے۔ اچھا، اس دہشت گردی کی لہر کو مختلف عوامل سے جوڑا جا رہا ہے۔ ہم نے صورتحال کو جاننے اور سمجھنے کے لیے گفتگو کی ہے نوجوان صحافی محترم کاشف رضا صاحب سے، آئیے ان کا نقطۂ نظر جانتے ہیں۔ السلام علیکم کاشف صاحب۔
جی وعلیکم صاحب۔
اچھا کاشف صاحب، میرا سوال بھی جو میں نے ابتدائیہ ہی بیان کیا ہے اسی میں مضمر ہے کہ آپ اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟
جی انجم صاحب، حالیہ مہینوں میں جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات میں جو ہوش ربا اضافہ ہوا ہے، یہ دراصل اس چیز کا ثبوت ہے کہ پاکستان کے پاس انسداد دہشت گردی کی کوئی جامع اور ایک کوہرنٹ اسٹریٹجی موجود نہیں ہے، اور ہمارے جو فیصلہ ساز ہیں انہوں نے کوئی ایک اچھی مؤثر اور جامع پالیسی مرتب نہیں کی، اور جو پالیسی اور جو اسٹریٹجی کاؤنٹر ٹیررزم کی ہماری اسٹریٹجی چل رہی ہے اس میں کافی فلاز ہیں۔ اس میں سب سے پہلا جو ہمارا فلا ہے، جو ہماری کمزوری ہے، وہ تو یہ ہے کہ ہماری پالیسی میں تسلسل نہیں ہے۔ مثلا ایک حکومت آتی ہے، وہ دہشت گردوں کے خلاف سخت ایکشن لیتی ہے اور ان کے خلاف آپ کائنیٹک آپریشنز کرتے ہیں، انہیں اپنے بارڈر سے باہر نکال باہر کرتے ہیں، ان کے نیٹ ورک کو آپ بریک کرتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جب حکومت پاکستان میں تبدیل ہوتی ہے، جب عمران خان گورنمنٹ کے بعد جو بیچ میں ایک انٹرم پیریڈ کے لیے گورنمنٹ آئی تھی، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ اس نے اپنی پالیسی جو تھی وہ مکمل چینج کر دی۔ یعنی ایک وقت میں ہم دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں، کبھی ہم دہشت گردوں کے خلاف ملٹری آپریشن کرتے ہیں، پھر کبھی ہم انہیں مین سٹریم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں اپنے علاقوں میں آباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس چیز سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی جامع اور کنسسٹنٹ کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی نہیں ہے، اور یہ جو نتائج ہم دیکھ رہے ہیں یہ اسی چیز کے نتائج ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہمارے فیصلہ سازوں کو کہ ملکی سطح پر، نیشنل لیول پر، ایک کمپریہنسو انسداد دہشت گردی کی، کاؤنٹر ٹیررزم کی ایک کمپریہنسو جامع مربوط پالیسی ہمیں مرتب کرنا ہوگی، اور سیکنڈ پارٹ میں ہمیں اس کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی پر عمل درآمد کرنا ہوگا، اور اس سے ہم اس دہشت گردی کے جن کو دوبارہ بوتل میں بند کر سکتے ہیں۔ تو بنیادی وجہ انکنسسٹنٹ پالیسی ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی نے پھر سر اٹھایا ہے، جن دہشت گردوں کو پھر پاکستان میں مین سٹریمنگ ان کی کرنے کی کوشش کی گئی تھی، ان کو فیملیز کے ساتھ لایا گیا تھا، انہوں نے پھر پاکستان کے اندر اپنا نیٹ ورک مضبوط کیا۔ ان دا مین وائل ہم یہاں پر پاکستان کے اندر اپنی پولیٹیکل اسٹرگل میں مصروف تھے، اقتدار کی کھینچتانی میں مصروف تھے، ہمارے فیصلہ سازوں کی توجہ بھی شاید جو ان کی اصل ذمہ داری ہے سیکیورٹی کو انشور کرنا، بارڈرز کا تحفظ یقینی بنانا، ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کو یقینی بنانا، اس سے زیادہ سیاسی جو رسا کشی تھی اس پر تھی۔ اس وقت کے دوران، اس ٹائم پیریڈ میں جو پچھلے دو تین سال ہوئے ہیں، اس تمام سچویشن پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل انریسٹ تھا، جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی، ایک جامع مربوط ایک کمپریہنسو کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی کا نہ ہونا، ان تمام وجوہات کی وجہ سے دہشت گردوں کو دوبارہ سنبھلنے کا موقع ملا، उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अपना नेटवर्क मजबूत किया और अब हम देख रहे हैं कि वो मजबूत ऑपरेशन कर रहे हैं, कामयाब ऑपरेशन कर रहे हैं। केपी के अंदर हालात इंतहाई कशीदा हैं, जो बनू लकी मरवत डी आई खान जैसे ये जितने छः सात जनूबी अजला हैं उसके अंदर सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। जो टी टी पी के दहशतगर्द हैं वो बाकायदा तौर पर उन्होंने अपनी सिक्योरिटी जो डिफरेंट किस्म की मकाम पर अपने पॉइंट्स बनाए हुए हैं वो आम शहरियों को वहाँ पर रोकते हैं, अगवा बराए तवान की वारदातें हो रही हैं, पुलिस निशाने पर है उनको मारा जा रहा है। सेम इज़ द सिचुएशन इन बलोचिस्तान, वहाँ पर भी जो सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब है और अब तो वहाँ पर दहशतगर्द कई कई घंटे रोड ब्लॉक करके वहाँ पर बाकायदा तौर पर उस इलाके पर अपना कंट्रोल कई 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 घंटे कायम कर देते हैं। तो सिचुएशन जो है इन दो सूबों में इंतहाई ख़राब है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारी स्ट्रेटजी नहीं है, हमारी कोई हिकमत अमली नहीं है और हम अपनी असल ड्यूटी से ज़्यादा पाकिस्तान में पोलिटिकल मेडलिंग में मसरूफ़ हैं। तो इस वजह से ये दहशतगर्दी जो है दोबारा सर उठा रही है। और इसके साथ साथ जो इसका दूसरा पहलू है वो ये है कि जो हमारी ये अजम्पशन थी आज से 3-4 साल पहले, जो हम ये समझ रहे थे कि जब अफगानिस्तान के अंदर हमारी एक बज़ाहिर हामी हुकूमत आएगी तालिबान की तो उससे पाकिस्तान की सूरत हाल यकसर तब्दील हो जाएगी। हमारे पॉलिसी साजों ने हमें ये नवीद सुनाई थी कि जैसे ही वहाँ पर हमारी हामी हुकूमत कायम होगी तो वो जो सो कॉल्ड इंडिया के जो 16 वहाँ पर कौंसलेट्स काम कर रहे थे वो सारे इनएक्टिव हो जाएंगे, वहाँ से टेररिज्म हो रहा था, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, तो जैसे ही वहाँ पर तालिबान की हुकूमत आएगी वहाँ पर वो ख़त्म हो जाएगी जो सारी कार्रवाइयाँ और अफगानिस्तान की ज़मीन को सरजमीन को हमारे खिलाफ जो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है वो उसके बाद नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तालिबान हुकूमत के आने भी तालिबान पढ़ाई होने के बावजूद भी उन्होंने जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP जो थे उनके खिलाफ उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, या जो कार्रवाई मौसर कार्रवाई जिस तरह से होनी चाहिए थी जो पाकिस्तानी हुकाम उनसे कह रहे थे कि आपको ये करनी चाहिए वो उन्होंने नहीं की ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि उन TTP का उनके साथ एक गहरा ताल्लुक था, वो माजी में एक ही ग्रुप था, उनकी नज़रियात एक जैसे थे, उन्होंने मिलकर वो सारी जंगें लड़ी हुई थी और वार ऑन टेरर के दौरान पाकिस्तान के तालिबान ने जो अब TTP की शक्ल अख्तियार कर गए उन्होंने अफगान तालिबान की भरपूर हिमायत की थी, तो इस नज़रियाती और हिस्टोरिक रिलेशनशिप की वजह से उन्होंने जो अफगान तालिबान थे उन्होंने TTP पे सही तरीके से उनके खिलाफ अफगानिस्तान में कार्रवाई नहीं की, जिस वजह से TTP के बदस्तूर वहाँ पर ठिकाने मौजूद हैं, उनकी तरबियत गाहें मौजूद हैं, वहाँ से वो लॉन्च हो रहे हैं, वहाँ से ट्रेन हो रहे हैं, वहाँ से इक्विप हो रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर वो दहशतगर्द कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जबकि हमारा जो काउंटर टेररिज्म का स्ट्रेटजी है वो मुकम्मल फेलियर है, हमारा इंटेलिजेंस फेलियर है। तो इन तमाम फेलियर्स की वजह से हम ये वाकयात में जो है वो इजाफा देख रहे हैं।
अच्छा, आपकी गुफ्तगू के पहले हिस्से पे क्या कोई वाज़े पॉलिसी नहीं, हम देखते हैं कि मकसद पाकिस्तान गुज़िश्ता 10-15 साल से मुख्तलिफ खास तौर पे जब APS सानही के बाद एपेक्स कमेटी बनती है, फिर ऑपरेशन रद्दुल फसाद, ऑपरेशन ज़र्बे अज़ब, बहुत सारे ऑपरेशंस हुए, यानी हर दो तरफ से सिक्योरिटी अदारों ने भी अपनी जिम्मेदारियां अदा की और सियासी कुव्वतें भी APS के बाद मिल बैठी थी और फिर मुख्तलिफ सरकारी और हुकूमती सतहों पे एपेक्स कमेटियों के इजलास और CTD ने बड़ा फाल होना, तो क्या ये सारी कोशिशें रायगढ़ जा रही हैं कि फिर ये अफरीत बोतल से निकलता है और तबाही बर्बादी फैलाना शुरू कर देता है?
देखिए, जो हमारी स्ट्रेटजी है वो हमारी प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी नहीं है, हम बुनियादी तौर पर रिएक्शनरी मोड में है, हमारा जो होता है वो नी जर्क रिएक्शन होता है, एक वाक्य होता है APS रोनमा होता है तो फिर एकदम से पूरी कौम जाग जाती है, पूरे जो फैसला साज हैं, हुकूमत है, मिलिट्री, वो सब एकदम से बहुत ज़्यादा हसासियत का इजहार करते हैं, नई पॉलिसी बनाई जाती है और उसके कुछ अरसा बाद फिर हमारा जोश ठंडा हो जाता है और फिर वही जो रूटीन वर्क होता है वही हो रहा होता है और फिर अगले सानिया पे फिर ये कौम और उसके फैसला साज जागते हैं। ये प्रैक्टिस हम पिछले कई दहाइयों से देख रहे हैं, जबकि दहशतगर्दी का जो फिनोमिना है उस पर काबू पाने के लिए आपको रिएक्शनरी के बजाय आपको प्रोएक्टिव जो है और प्रियम्प्टिव ऐसी इकदामात करने पड़ते हैं। आपको अपनी जो काउंटर इंटेलिजेंस है, आपको अपनी जो सर्वेलेंस है उसको, आपको अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों की कैपेबिलिटी को बढ़ाना पड़ता है, और आपको वाकये के होने से पहले उसकी ना सिर्फ मालूमात हासिल करने होती है बल्कि उन मालूमात की बुनियाद पर आपके जो सिक्योरिटी के इदारे होते हैं उनको उस दहशतगर्द ग्रुप को नाकाम भी बनाना होता है, और वाकयात होने से पहले ही जो है उनको उसका कला कामा करना, ये एक कामयाब स्ट्रेटजी होती है। और दुनिया के ममालिक में हम देखते हैं, मसलन 9/11 हुआ, एक मरतबा हुआ, उसके बाद अमेरिका ने उससे सबक हासिल किया, उस पूरे वाकया को उसको स्टडी किया गया, उसको एनालाइज किया गया, उसके अकॉर्डिंगली फिर वहां पर पॉलिसीज बनी, और फिर पॉलिसीज के साथ ही वहां पर उन्होंने अपने अपने जो डिफरेंट इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, जिसमें मसलन जैसे वहां पर FBI है, उसने अपना रोल प्ले किया, बाकी उनकी जो सिक्योरिटी से मुतल्लिका पूरा जो इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स है उसने अपने अपने जिम्मा लिए काम, और उसके बाद उन्होंने वाकयात होने से पहले ही दहशतगर्दों को जो है वो अप्रिहेंड किया, उनको गिरफ्तार किया, उनके जो मुख्तलिफ मंसूबे थे उनको नाकाम बनाया, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि 9/11 के बाद अमरीका में उसके बाद उस सतह का कोई बड़ा दहशतगर्दी का वाकया नहीं हुआ। इक्का दुक्का जो वाकयात छोटे मोटे होते रहते हैं होते हैं, उनको बड़ा वाकया नहीं हो सका। सेम इज द केस हम इसराइल जैसे मुल्क के अंदर देखते हैं, जो एक सिक्योरिटी स्टेट है, जिस जो कि हर वक्त जंग की हालत में होती है क्योंकि वो एक गासिब रियासत है, उसकी भी काउंटर टेररिज्म की स्ट्रेटजी में हम देखते हैं कि इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा किरदार होता है, और वो प्रियम्प्टिव चल रहे होते हैं, बजाय इसके कि किसी वाकये के होने के बाद वो रद्दअमल की स्ट्रेटजी अडॉप्ट करें, वो प्रियम्प्टिव जो मैयर्स होते हैं वो लेते हैं, उनका जो इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स है वो बहुत इफेक्टिवली परफॉर्म कर रहा होता है, उन्होंने अपनी दहशतगर्द ग्रुपों के अंदर जो अपनी पेनिट्रेशन होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ाई होती है, और वो वक्त से पहले दहशतगर्दों का कला कमा करते हैं, या वो उन मिलिटेंट्स का, जंगजुओं का जो उन पर हमला कर सकते हैं, उनके जो मंसूबे हैं उसको नाकाम बनाते हैं। ये चीज पाकिस्तान के अंदर जो है, इस चीज की पाकिस्तान के अंदर हम कमी महसूस करें कि हमारा जो इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स है उसकी जो मुनासिब सतह, इस तरह की इन मिलिटेंट्स के अंदर, इन दहशतगर्द तंजीमों के अंदर उसकी पेनिट्रेशन होनी चाहिए थी, वो नहीं है, जिसकी वजह से बर वक्त इन वाकयात की इतला या तो हम तक पहुंच नहीं रही, या अगर हम पहुंच रहे तो फिर हम उनको नाकाम बनाने में कामयाब नहीं हो रहे। तो इसलिए इस तमाम को काउंटर करने के लिए हमें अपने ओवरऑल इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स को बेहतर बनाना होगा, और उसके लिए सबसे जो बेहतरीन था कि आज से 10 साल पहले जब इस तरह के वाकयात हुए थे तो आपको याद होगा कि एक नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी नेक्टा के नाम से एक इदारा बनाया गया था, जिसका मकसद ये था कि नेक्टा एक ऐसा सेंट्रल पॉइंट होगा इस्लामाबाद के अंदर जिसमें तमाम इंटेलिजेंस एजेंसी जो होंगी वो अपना अपना इनपुट देंगी, अपनी अपनी जो उनके पास इंफॉर्मेशन आ रही होगी वो इंफॉर्मेशन वहां पर शेयरिंग करेंगी, और उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर वहां से एक प्रॉपर ऑपरेशनल प्लान बनेगा, एक स्ट्रेटजी मुरतब की जाएगी, और दहशतगर्दी के खिलाफ इफेक्टिव जो मेजर्स हैं वो लिए जाएंगे। तो अनफॉर्चुनेटली हमने नेक्टा तो बना दिया, उसकी उसमें कुछ ना कुछ हमने लोगों को भी हायर कर लिया, लेकिन कुछ अरसे के बाद बावजूद वो नेक्टा इदारा जो था वो उस तरह से फाल नहीं रह सका, तो और हमने देखा कि अब नेक्टा जो है वो अब उस तरह से इफेक्टिव नहीं है, तो वो वाकयात फिर हम देख रहे हैं कि उसमें इजाफा हो रहा है, तो हमें एक दफा फिर उस तरह के इदारे को मौसर बनाना होगा, नेक्टा को मौसर बनाना होगा।
अच्छा कश्यप, तजिया निगारों की एक राय ये भी है कि अगस्त 2021 में जब अफगान तालिबान दोबारा इकतदार संभालते हैं तो ये शिद्दत पसंद जो खास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में दोबारा मुनज़्ज़िम हुआ, हालांकि अफगान तालिबान की ये यकीन दहानी थी कि ये अपनी कि वो पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन ये गिरोह खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में खास तौर पे सिक्योरिटी फोर्सेस, सरकारी तंसीबात और आम शहरियों को निशाना बनाने की बड़ी शोहरत रखता है, और लगता है यही है कि ये गिरोह फिर एकदम मुनज़्ज़म होकर फ़ाल हुआ है, क्या कहते हैं आप इसके?
जी बिल्कुल, देखें तालिबान ने गो के पाकिस्तान को मुतअद्दिद बार इस चीज़ की यकीन दहानी करवाई है कि वहाँ उनकी सरजमीन से तालिबान, अफगानिस्तान की सरजमीन से तहरीक तालिबान पाकिस्तान को वहां से ऑपरेट होने नहीं दिया जाएगा, लेकिन इफेक्टिवली ऐसा हो नहीं सका। उसकी मुतअद्दिद रीजंस हैं, क्योंकि तालिबान खुद, अफगान तालिबान जो है वो कोई एक ग्रोह नहीं है, वो मुख्तलिफ ग्रोहों का मजमुआ है, जिसमें मुख्तलिफ ग्रोहों की अपनी पॉलिसी है, उनके अपने इंटरेस्ट भी हैं, जो कि कई जगहों पर वो डाइवर्जिंग इंटरेस्ट हैं, मतलब वो इंटरेस्ट जो है वो एक दूसरे के साथ टकरा रहे होते हैं। फिर अफगान तालिबान पर मुख्तलिफ ममालिक का असर है, कुछ अफगान तालिबान अमरीका के जेरे असर हैं, कुछ पाकिस्तान के जेरे असर हैं, कुछ हत्ता के इंडिया के भी जेरे असर हैं, कुछ ऐसे उनके इंडिया के साथ पिछले 3-4 साल में उनके अच्छे ताल्लुकात जो है वो डिवेलप हुए हैं। तो इस वजह से, इन वजूहात की वजह से, मुख्तलिफ जो रीजंस हैं, जो आपकी जियोपॉलिटिकल रीजंस हैं, उनकी वजह से जो अफगान तालिबान थे उन्होंने उस तरह से टीटीपी के खिलाफ मौसर एक्शन नहीं लिया। और उसकी एक वजह तालिबान का आपस में, यानी टीटीपी और जो अफगान तालिबान है उनका आपस में तारीखी जो रिलेशनशिप है, जो उनका एक तारीखी ताल्लुक है, एक नजरियाती ताल्लुक है, क्योंकि नजरियाती तौर पर ये जो तालिबान है ये एक ही नजरिया से ताल्लुक रखते हैं, और सभी का मरकज जो दारुल उलूम हकानिया जो अकोड़ा खटक है, ये सब तकरीबन जो अफगान तालिबान के इब्तदाई लोग थे वो सब इसी मदरसा के परवरदा थे, यहीं से वो ट्रेन हुए, यहीं से नजरियाती तो उन्होंने जो अपनी इंस्पिरेशन थी वो हासिल की। तो इसकी वजह से उनके अंदर, फिर हम देखें कि जो वार ऑन टेरर थी उसमें भी इन तालिबान का आपस में एक दूसरे के साथ गहरा ताल्लुक रहा। अफगान तालिबान पाकिस्तान के अंदर आए और आज जो टीटीपी में लोग चले गए, इन्होंने इन्हें पनाह दी, तो इनके आपस में बहुत गहरे ताल्लुकात हैं, नजरियाती ताल्लुक है, तारीखी ताल्लुक है आपस में, इनके जाति जो पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, बॉन्ड है, बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का बॉन्ड है, तो उसको तोड़ना इतना आसान नहीं है। इस वजह से भी जो अफगान तालिबान है उन्होंने टीटीपी के खिलाफ कोई ज्यादा सख्त कार्रवाई नहीं की, तो इस वजह से टीटीपी को पाकिस्तान के अंदर दोबारा ऑर्गेनाइज होने का मौका मिला। लेकिन ये तो चीजें ऐसी हैं कि दुश्मन तो आपका ऑर्गेनाइज भी होगा, आपके खिलाफ कार्रवाइयां भी करेगा, और जो आपका बैरूनी दुश्मन है, जो आपका आर्च राइवल है, वो आपकी इन कमजोरियों से हमेशा फायदा उठाने की कोशिश करेगा। ये तो एक अंडरस्टूड सी बात है जो हमेशा होता है। सवाल ये है कि हम इन कमजोरियों को दूर क्यों नहीं कर पा रहे, और हम इन सारी चीजों को जानने के बावजूद भी उस पर ओवरकम क्यों नहीं कर पा रहे। तो ये चीज है, ये कोई वो नहीं है कि फलान इसके खिलाफ, मसलन बैरूनी एलिमेंट्स पर तो आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन जो चीजें आप कंट्रोल कर सकते हैं इफेक्टिव स्ट्रेटजी के साथ, एक अच्छी पॉलिसी के साथ और कंसेंसस बिल्डअप करके, वो तो आपके हाथ में है। आप पाकिस्तान के अंदर वो एक अच्छी दहशतगर्दी की पॉलिसी बेहतर करके बनाकर, आपस में मुख्तलिफ इदारों का, इंटेलिजेंस एजेंसियों का, पुलिस का, मिलिट्री का, आपस में कोऑपरेशन बढ़ाकर, कोऑर्डिनेशन बनाकर जो है आप दहशतगर्दी की कार्रवाई तो कर सकते हैं। तो जो आपके काम करने का है हम वो भी नहीं कर रहे, जबकि हम दुश्मन को कह रहे हैं या एक दूसरे मुल्क को कह रहे हैं कि आपने काम नहीं किया, वो तो उनके काम करने का है या नहीं है, लेकिन आपका जो काम करने का ड्यूटी है, जो हमारी अपनी इंटरनल जो चीजें हैं, जो डूएबल्स थे, जो हमें करने चाहिए थे, वो हमने नहीं किए, तो क्वेश्चन मार्क जो है वो हमारी अपनी कारकर्दगी पर है, हमारी फैसला साजी पर है, और हमारी जो कंसिस्टेंसी पर।
जी अच्छा, कैसर एक इत्तफाक नहीं, दारुल हुकूम हक्कानिया में बड़ा खौफनाक हमला होता है, उसके बाद बन्नू की छावनी पे हमला होता है, इसी दौरान काबिल एयरपोर्ट धमाके में मुल्ला जाफर गिरफ्तार होता है और अमेरिका के हवाले किया जाता है, और अमेरिकी सदर अपने कांग्रेस के पहले खिताब में पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा करता है, और पाकिस्तानी हुकूमत भी इस उनके अमल को सराहती है। ये सारी चीजें कोई कड़ियां नहीं जुड़ रही के, और अफगान हुकूमत अभी तक इस सारे मामले में खामोशी इख्तियार किए हुए है।
देखिए, ये जो वाकयात आपने गिनवाए हैं, इससे ये जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान काउंटर टेररिज्म की डोमेन में काफ़ी गहरा तावन, क्लोज कोऑपरेशन जो है वो जारी है, जिसके रद्दअमल में ये हम देख रहे हैं। और ये भी हमें याद रखना होगा कि इसी, यानी आज से कुछ 2 हफ्ते पहले 25 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया ने एक खसूसी इस्तस्ना के जरिए पाकिस्तान को $397 मिलियन की सिक्योरिटी असिस्टेंस जो है वो रिलीज की है, और ये एक स्पेशल एग्जेम्पशन पाकिस्तान को दी गई है, क्योंकि इस वक्त ट्रंप ने जो सिक्योरिटी की मद में मुख्तलिफ ममालिक को जो इमदाद थी जारी होने वाली, अमरीका से जारी होने वाली इमदाद, उस पर उसने पाबंदी आयद की हुई है, लेकिन पाकिस्तान को वो इमदाद जारी की गई है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान जो है वो काफी अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान सिक्योरिटी डोमेन में क्लोज कोऑपरेशन चल रहा है, और उस तावन का रद्दअमल हम ये देख रहे हैं। ये जो अकोड़ा खटक के अंदर वाकिया हुआ, दारुल उलूम हक्कानिया के अंदर वाकिया, बंदू में कैंट के अंदर जो हमला करने की कोशिश की गई, या दीगर जो के पी के अंदर या बलूचिस्तान के अंदर हम वाकियात देख रहे हैं, ये उसी चीज की इंडिकेशन है कि पाकिस्तान अमरीका के साथ सिक्योरिटी डोमेन में एक फिर क्लोज कोऑपरेशन कर रहा है। तो उसके रद्दअमल में दाइश और ये दीगर जो ग्रुप्स हैं वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों पर भी हमला कर रहे हैं, और वो पाकिस्तान के अवाम को भी निशाना बना रहे हैं। तो ये इस चीज़ का इंडिकेशन है कि हमारे दरमियान जो है वो सिक्योरिटी कोऑपरेशन चल रहा है। और माजी में जिस तरह मुशर्रफ दौर में फिर अमरीका और पाकिस्तान ने सिक्योरिटी के मामलों पर इस्तेदाद दहशतगर्दी के हवाले से गहरा तआवुन किया था, तो उस वक्त भी रद्दअमल सामने आया था, और इस वक्त भी पाकिस्तान में इन जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका रद्दअमल हम इन हमलों की शक्ल में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में देख रहे हैं।
अच्छा कैसा, फिर मैं आपकी दोहरे मेयार अमरीकी के जो बाइडन इंतजामिया मिसाइल टेक्नोलॉजी की बिना पे पाबंदियां लगाती है, ट्रंप इंतजामिया आते ही एक तरफ तो इमदाद बहाल करती है, दूसरी शुक्रिया अदा करती है, और दूसरी तरफ खबरें बहुत दिनों से, एक दो तीन दिन से चल रही है कि पाकिस्तानी और अफगान शहरियों की पाबंदी लगाई जा रही है अमरीका में दाखिले पे। तो इस सारी सूरत हाल में क्या कहा जाए कि अमरीका पाकिस्तान के साथ किस किस्म के ताल्लुकात उस्तवार रखना चाहता है?
देखिए, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की तारीख ये रही है कि ये हमेशा ट्रांजैक्शनल नेचर के रहे हैं, यानी अमेरिका को जब भी पाकिस्तान की जरूरत पड़ी उसने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया, उसे मराज से नवाजा, और जैसे उसकी जरूरत पूरी हो गई तो उसने फिर पाकिस्तान पर पाबंदी आयद की। यही हम देखते हैं मसलन जब अफगान वार अभी शुरू नहीं हुई थी, जो अफगान वार फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जो अफगान सोवियत यूनियन के कब्जे से पहले की बात, तो उस वक्त पाकिस्तान पर मुख्तलिफ पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से पाबंदियां थी, फिर सोवियत यूनियन ने हमला किया तो वो पाबंदियां हट गई, और पाकिस्तान जो है वो सबसे बेहतरीन जो नॉन नेटो एलाई बन गया, और उसकी इमदाद जारी कर दी गई। फिर हमने देखा पाकिस्तान ने जिहादियों की मदद से और अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ मिलकर इन सोवियत यूनियन को शिकस्त दे दी, तो जैसे ही अमरीका का ये काम मुकम्मल हुआ तो फिर हमने देखा कि उसके बाद फिर पाकिस्तान पर मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियाँ आयद हो गई, फिर ये पाबंदियों का सिलसिला चलता रहा। 9/11 जब हुआ तो उसके बाद फिर पाकिस्तान की जरूरत पड़ी तो अमरीका ने फिर वो पाबंदियाँ ख़त्म कर दी, और फिर पाकिस्तान की इमदाद बहाल हो गई, और ये चीज़ हम आखिर तक देखते हैं कि ये फिर वार ऑन टेरर जब ख़त्म हुई तो फिर कैरी लूगर बिल आ गया, वो पाबंदियाँ शुरू। तो कहने का मतलब ये है कि अमरीका हमेशा पाकिस्तान के साथ जो है वो ट्रांजेक्शनल जो है वो अपने रिलेशनशिप रखता है, जब उसको जरूरत होती है तो वो पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है और कुछ ना कुछ इमदाद उसको देता है, जबकि उसका नुकसान पाकिस्तान को ज्यादा होता है। मसलन जब हम वार ऑन टेरर में गए तो उसके नतीजे में जो पाकिस्तान को लॉस हुआ वो कोई $150 बिलियन का हमें लॉस हुआ, और 80,000 से जायद पाकिस्तान के जो अवाम हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग थे, वो सारे उसमें अपनी जान से गए। तो ये अभी भी हम यही देख रहे हैं, वही माजी का तसलसल है कि अब दाइश के खिलाफ कोऑपरेशन की जरूरत महसूस की गई तो अमेरिका ने हमें फिर एंगेज किया। तो अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के साथ उस तरह के स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप जो है वो कायम नहीं करना चाहता जिस तरह से उसका इंडिया के साथ एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, जिसमें दोनों ममालिक बहुत बड़े बड़े सतह पर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन करते हैं, बड़े बड़े मंसूबों पर मिलकर काम कर रहे हैं, उनकी वजारत दिफा और वो दोनों, और इसी तरह मुख्तलिफ इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स पर। तो उस तरह का अमेरिका के साथ ना हमारा माजी में ताल्लुक रहा है, ना अब ताल्लुक है, और ना मुस्तकबिल में इस तरह के ताल्लुक की कोई उम्मीद है। तो ये नेचर जो होगी इस रिलेशनशिप की वो इसी तरह ट्रांजेक्शनल होगी, जब अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत होगी तो वो पाकिस्तान को इस्तेमाल करेगा, और फिर उसके बाद वो मफादात हासिल करने के बाद पाकिस्तान को उसी तरह से वो जो है वो दोबारा वो उसे छोड़ देगा, तनहा छोड़ देगा।
अच्छा कैसा, कुछ तजिया निगारों का ये कहना है कि अपनी ताकतें पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम रखकर अपने उस स्ट्रेटेजिक मफादात का तहफ्फुज़ करती है, पाकिस्तान को कमजोर करके चीन के बढ़ते हुए असर व रसूख के खिलाफ एक बफर जोन के तौर पर इस्तेमाल करता है, खासतौर पर सी पैक मनसूबे के तनाजुर में अगर हम देखा जाए, जैसा बलूचिस्तान में अभी आपने गुफ्तगू में भी जिक्र किया कि भारत ने BLA और अलहदगी पसंदों को सपोर्ट करना, तो यानी मगरबी एजेंसियां भी मिलकर अपने जियो पोलिटिकल इंटरेस्ट के लिए ऐसे दहशतगर्द ग्रोहों की बिलवास्ता हमायत कर रही हैं।
देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर चीन का जो बढ़ता हुआ असर रसूख है और उसका जो खासकर ये जो फ्लैगशिप जो सी पैक प्रोजेक्ट है उस पर हमेशा से जो अमेरिका है या जो दीगर ममालिक हैं भारत है उसकी उस पर नज़र है और उसे वो नाकाम बनाना चाहते हैं। और हमने देखा कि माजी में भी इन मुख्तलिफ बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उन्होंने चीनी मफादात पर यहाँ पर हमले किए, उनके इंजीनियर्स पर हमले किए, डिफरेंट किस्म की उनकी जो यहाँ पर जो उनके प्रोजेक्ट्स चल रहे थे उनको निशाना बनाया गया। और अभी हाल ही में एक बड़ी मुफसल किस्म की मीटिंग हुई है इन तमाम जो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी इनकी और TTP की और इन सब ने, और उसमें कुछ सिंध से भी कुछ मैं नाम पढ़ रहा था कि उसमें कुछ सिंध से नए जो नाम सामने आए मिलिटेंट ग्रुप्स के वो भी उसमें शामिल थे। वो तो इन्होंने बड़ी कोई बलूचिस्तान में किसी खुफिया जगह पर एक कुछ दिन के लिए इन्होंने मीटिंग जारी की और उसके बाद इनकी तरफ से एक मुश्तरका एलामिया जारी हुआ और इन तमाम जमातों ने जो कि हालांकि नजरियाती तौर पर जो है वो मुख्तलिफ हैं, BLA जो है एक कॉम्प्रेस दहशतगर्दी की और सियासी एक तहरीक है, जबकि TTP जो है वो एक जिहादी मजहबी देवबंदी एक जो है मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके नजरियात में, उसके सियासी एजेंडा में, उसके जिहादी एजेंडा में बहुत ज्यादा फर्क है। लेकिन उसके बावजूद इन तमाम जमातों को, इन तमाम दहशतगर्द तंजीमों का एक जगह पे इजलास होने का मतलब ये है कि इनके जो पीछे चलाने वाले हाथ हैं वो कहीं ना कहीं पर वो एक जगह पर वो इकट्ठे हो रहे हैं, वो एक है। और वो जो पीछे हमेशा इन नॉन स्टेट एक्टर के पीछे कोई ना कोई स्टेट होती है, क्योंकि स्टेट के बगैर, स्टेट या एक से ज्यादा स्टेट की मदद के बगैर ये नॉन स्टेट एक्टर कभी भी जो है वो जिंदा नहीं रह सकते, ज्यादा देर तक वो अपने आप को, अपना वजूद बरकरार नहीं रह सकते और ना ही वो कामयाब कार्रवाइयां कर सकते हैं। तो इन तमाम मुख्तलिफ नजरियात की हामिल तंजीमों का एक जगह पर इकट्ठा होना, वहां पर इजलास करना और वहां पर एक जॉइंट स्ट्रेटजी अडॉप्ट करना, करने के बाद एक एलामिया जारी, उससे मुतल्लिक एलामिया जारी करना, ये जाहिर करता है कि इन तमाम के पीछे जो है इन तमाम के ताने बाने कहीं पर जाकर मिल रहे हैं और वो वही ममालिक हैं पाकिस्तान के जो दुश्मन ममालिक हैं, जो पाकिस्तान के आर्च राइवल है, वो उसके पीछे हैं, वो स्टेट्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर अपने अपने एजेंडा के लिए, अपने अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की खातिर या चीन को नीचा दिखाने के लिए या चीनी मफादात को ज़्यादा पहुंचाने के लिए वो पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी पैदा करने चाहते हैं। तो ये फैक्टर भी जो बैरूनी है वो फैक्टर तो है, लेकिन फिर मैं उसको रिपीट करूंगा कि बैरूनी अवामिल तो बैरूनी एजेंसियां, बैरूनी दुश्मन आपकी कमजोरियों से हमेशा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और ये हमेशा होता है। हम भी अपने दुश्मन की, अगर हमें मौका मिलेगा या माजी में अगर पाकिस्तान को मौका मिला था तो उसने भी कई जगहों पर अपने हरीफ की, अपने दुश्मन की या हत्ता के अपने जो उसका एलाय था अमरीका, उसकी कमजोरियों से पाकिस्तान ने भी फायदा उठाया है। हमने भी इंडिया के अंदर जो 7 उसकी सिस्टर स्टेट्स हैं उसके अंदर जब इंसर्जेंसी वहां पर चल रही थी तो पाकिस्तान भी उसको सपोर्ट कर रहा था। तो दुश्मन हमेशा जो होता है वो दुश्मन अपने दुश्मन के खिलाफ उसकी कमजोरियों को इस्तेमाल करता है, लेकिन फिर सवाल ये होता है कि आप उस दुश्मन की स्ट्रेटजी को नाकाम कैसे बनाते हैं। तो उस स्ट्रेटजी को नाकाम बनाने की आपकी, आपके फैसला साजों की, आपकी हुकूमत की, आपके सिक्योरिटी इदारों की, आपकी फौज की, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियों की जिम्मेदारी है। तो सवाल उनसे होगा, क्योंकि आप दुश्मन को ये नहीं कह सकते कि आप अपनी कार्रवाइयां बंद करें, आप अपने फैसला साजों से और जो जिम्मेदारान हैं, जो मसूलीन हैं, उनसे आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपने दुश्मन की स्ट्रेटजी को नाकाम बनाने के लिए क्या किया, क्या इकदाम उठाए, क्या पॉलिसी बनाई और उसका क्या नतीजा बरतता जो सामने आए।
बहुत शुक्रिया काशिफ साहब आज की गुफ्तगू से हाजरीन नाज़रीन और सामईन के, काशिफ साहब के, कि हमें सियासी सतह पर और इंतजामी सतह पर और सिक्योरिटी की सतह पर एक ऐसी मुस्तकिल पायदार जामे और हमागीर पॉलिसी अपनाने की जरूरत है जिसमें से पाकिस्तान, महफूज पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान और एक ऐसा पाकिस्तान के जो हर शख्स के लिए महफूज तरीन हो वो बने। और उसके लिए यकीनन सिर्फ सिक्योरिटी अदारे, सिर्फ अफवाज, सिर्फ सियासी अदारे, बल्कि ये सब मिलकर पाकिस्तान के तहफ्फुज के लिए सरगर्म अमल रहें और एक सोच के साथ जिसमें पाकिस्तान का तहफ्फुज और महफूज पाकिस्तान हो, तो यकीनन पाकिस्तान बैरूनी और अंदरूनी दुश्मनों की कार्रवाइयों और साजिशों से महफूज रह सकता है। मैं काजी साहब आपका शुक्रिया अदा करते हुए इंशाल्लाह आपसे मजीद रब्ता रहेगा, इजाजत चाहता हूँ, खुदा हाफिज़, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।